أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا له الفداء. أما بعد، ہماری گفتگو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت آل محمد میں چل رہی ہے. آج ہماری بحث کا عنوان امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت ہے. جیسا کہ متعدد بار ذکر کیا جا چکا ہے کہ ان دروس کا محور شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. ان دروس میں فقط انہی مطالب کو بیان کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا کہ جو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں. لہذا شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے فقط امام رضا علیہ السلام تک کی سیرت کو بیان کرنے کے بعد پھر امام عسکری علیہ السلام کی سیرت پر آ گئے. چونکہ یہ کتاب مجموعہ ہے ان کی تقاریر کا، مختلف مناسبتوں سے انہوں نے جو تقاریر کی ہیں آئمہ کی سیرت کے اوپر ان کو جمع کیا گیا ہے. لہذا جو فرصتیں ان کو ملتی رہی، جو عنوان ان کو دیا جاتا رہا، وہ سٹیج پر آ کر بیان کرتے رہے، تو ان میں جن جن معصوم ہستیوں پر انہوں نے گفتگو کی وہ اس کتاب کے اندر ذکر ہوئی ہیں. تو چونکہ باقی آئمہ کی سیرت کے بارے میں انہوں نے کوئی مطلب بیان نہیں کیا، تو ہم بھی اسی کتاب کی اتباع میں ان کی سیرت کو فعلاً ذکر نہیں کرتے. انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا ہے، لہذا ہم اسی مطلب کو ہی بیان کریں گے. امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور بھی اگر دیکھا جائے تو بہت ہی سخت تھا. امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکری کیوں کہا جاتا ہے؟ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یوں فرماتے ہیں کہ جب عباسی حکومت نے اپنا دارالحکومت منتقل کیا بغداد سے سامرہ کی طرف، کیونکہ سامرہ کو ایک فوجی چھاونی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جب فوجی بغداد میں رہا کرتے تھے تو لوگوں نے کافی شکایات کی کہ فوجی حضرات ہمیں بہت زیادہ اذیت کرتے ہیں. شکایات کی، پہلے تو حاکم نے توجہ نہ دی، لیکن بعد میں جب شکایات میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا تو حاکم جو عباسی خاندان میں سے تھا معتصم، اس نے دارالحکومت کو سمرہ کی طرف منتقل کر دیا، خود یعنی وہاں چلا گیا اور فوجیوں کو اپنے ساتھ لے گیا. امام حسن عسکری علیہ السلام کو اپنی نظارت میں رکھنے کی خاطر انہوں نے امام نقی علیہ السلام اور امام عسکری علیہ السلام کو سامرہ میں رکھا، مجبور کر کے ان کو یہاں لایا گیا. اب چونکہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام ایک ایسے علاقے میں رہ رہے تھے کہ جس کو العسکر کے نام سے یاد کیا جاتا، العسکر یعنی لشکر، جہاں لشکر رہتا ہے، تو اسی وجہ سے امام کا جو لقب پڑ گیا وہ امام حسن عسکری. امام حسن عسکری علیہ السلام 28 سال کی عمر میں ہی شہید ہو گئے. 6 سال ان کی حکومت کا دورانیہ رہا، لیکن اس 6 سال کے اندر دشمن نے ان کو سکھ کا سانس نہ لینے دیا. مختلف پابندیاں لگائی گئی ان کے اوپر، کچھ وقتوں کے لیے ان کو ممنوع الملاقات کر دیا جاتا، یعنی کوئی ان سے ملنے نہیں جا سکتا، और अगर मुलाकात को आज़ाद कर भी दिया जाता तो उनको नज़ारत में रखा जाता, जासूसी में रखा जाता, यानी मुख्तलिफ जासूस उनकी महफ़लों में छोड़े जाते। ये सख्तियाँ क्यों की जा रही थी? तारीख़ में यह ज़िक्र हुआ है कि चूँकि पैगंबर की तरफ से मुतअद्दिद रिवायात थी कि अली अलैहिस्सलाम की औलाद से एक बच्चा मुतवल्लिद होगा कि जिसका नाम मेहदी होगा और वो दुनिया को अदल व इंसाफ से पुर कर देगा। तो अब इन जालिम हुक्मरानों के लिए ये एक चैलेंज की हैसियत रखता था, क्योंकि वो ये जान चुके थे कि अगर वो बच्चा मुतवल्लिद हो गया और बड़ा होकर वो आदल को कायम करने के लिए आमादा हो गया तो हमारी हुकूमतें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो लिहाजा उनकी कोशिश ये रही है कि वो बच्चा मुतवल्लिद ना हो। अब चूंकि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बारे में उनको ये एहसास ज़्यादा था कि इसी के औलाद में से होगा वो बच्चा, तो उनको ज़्यादा सख्तियों में रखा गया, इनकी ख़वातीन पर नज़र रखी गई, इनकी कनीज़ों के ऊपर सख्ती की गई। हत्ता एक के बारे में मिलता है कि किसी ने खबर दी कि फ़लानी कनीज़ जो है वो हामिला हो चुकी है, तो उनको पकड़ के ले गए। एक साल तक अपने पास उन्होंने उस कनीज़ को रखा, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये खबर छूटी थी। इस हद तक जो है वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को नज़ारत में रखते थे। एक और जो चीज़ इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र करते हैं शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह, वो ये कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के अंदर एक ख़ास किस्म की हैबत मौजूद थी। जब भी कोई इमाम के सामने आता तो उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता। हत्ता मुखालिफीन भी जो इमाम के सामने आते थे वो भी उनसे मुतासर हो जाते थे। एक ख़ास किस्म की हैबत थी इमाम के ऊपर के खुदावंद मुताल ने उनको उस ज़माने में अता की। अब्बासी हाकिम ने बहुत कोशिश की कि ये अगला बच्चा जो है वो मुतवल्लिद ना हो, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की औलाद ना हो। मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन ये हाकिम अब्बासी इस बात को भूल चुके थे कि फिरौन ने जब ये चाहा कि हजरत मूसा मुतवल्लिद ना हो, उसने तमाम बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया और हामिला औरतों के ऊपर नज़ारत शुरू कर दी, और ये चाहा कि हज़रत मूसा मुतवल्लिद ना हो, लेकिन चूंकि खुदावंद मुताल का इरादा था हज़रत मूसा मुतवल्लिद हो गए। तो इसी तरीके से खुदावंद मुताल का इरादा था कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम बाओलाद हों, और इमाम मेहदी पैदा हों, और वो पैदा हुए। लिहाजा खुदा के इरादे के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता, ये हाकिम अब्बासी भूल चुके थे। खुदा का इरादा मुतहक्किक हुआ, इमाम ज़माना पैदा हुए, और आज इमाम ज़माना गैबत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की सीरत में उसकी तरफ इशारा होगा। शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की सीरत में फ़कत इतने ही मतालिब बयान किए हैं। इसके बाद मुंतकिल होते हैं वो अदल कुल्ली के बहस में। चूँकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में बहस करना चाहते हैं, तो चूँकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में ये ज़िक्र हुआ है कि वो इस दुनिया को अदल व इंसाफ से पुर कर देंगे, तो इस ज़ुमरे में शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह अदल कुल्ली की बहस को जिक्र करते हैं। पहला नुक्ता जो जिक्र करते हैं इस बहस के अंदर वो ये है कि अंबिया को खुदावंद मुताल ने दो हदफ देकर भेजा। एक अदब यह था कि लोगों को खुदा की तरफ मुतवज्जह करें, लोगों और खुदा के दरमियान इर्तिबात बेहतर हो, सही हो, लोग अपना इर्तिबात दुरुस्त करें खुदावंद मुताल के साथ, खुदावंद मुताल की इबादत हकीकी अंजाम दें, अपने खालिक की तरफ मुतवज्जे रहें। यह पहला हदफ था। इस हदफ के बारे में कुरान इस तरीके से इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबीयो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए नबी हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, हमने आपको बशारत देने वाला और नज़ीर बनाकर भेजा, वदाइयन इलल्लाह बिइज़्ने, और आपको भेजा ताकि आप इज़्ने खुदा के जरिए खुदा की तरफ दावत दें, व सिराजन मुनीरा और रोशन चराग बनाकर भेजा। दूसरा हदफ जो अंबिया लेकर आए इस कायनात के अंदर वो आदल का कयाम है, यानी लोगों का अपने साथ जो राबता है वो दुरुस्त हो और वो अदालत के बुनियाद पर कायम हो, बशर का बशर के साथ जो इर्तिबात है वो अदालत की बुनियाद पर हो। आदल कायम करना इस कायनात के अंदर अंबिया का एक अहम तरीन हदफ था और कुरान ने इंतहाई सराहत के साथ इस मतलब की तरफ भी इशारा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लकद अरसलना रसुलना बिलबैनात, हमने अपने रसुल वाज़ह निशानियों के साथ भेजे, व अनज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान, और हमने अंबिया के साथ किताब और मीज़ान को नाजिल किया, क्यों, लियकूमन नासो बिलकिस्त, ताकि लोग आदल कायम कर सकें। लिहाजा अंबिया का एक अहम तरीन हदफ आदल कायम करना है। आदल क्या है उसकी तारीफ अभी बाद में जिक्र होगी। शेख मुताहरी रहमतुल्ला अलैह ने जो ये उन्वान दिया है आदल कुल्ली, इसकी थोड़ी वजाहत करना चाहता हूं और शेख मुताहरी ने इसको बयान किया है। आदल कुल्ली से मुराद ये है कि बशर पर एक जमाना ऐसा आएगा कि जब जुल्म सितम का नामो निशान नहीं रहेगा और यह बशर अदालत के साथ जिंदगी गुजारेगा, यानी आदल इतना ज्यादा वसी होगा, पूरी जमीन के ऊपर फैला हुआ होगा कि कोई जमीन का कोना आदल से खाली नहीं होगा। इसको कहते हैं आदल कुल्ली। इसमें फिर तीन बहसें करना बहुत जरूरी हैं कि सबसे पहली बहस यह है कि अदालत की तारीफ क्या है, दूसरी बहस यह कि आया बशर फितरत के एतबार से अदालत को चाहता है या ना, बल्कि उसके ऊपर तहमील की जाती है अदालत को, और तीसरी चीज ये कि आया इस किस्म की अदालत के जो कुल्ली हो और पूरे जहान पर हाकिम हो, ये आया अमली भी हो सकती है या नहीं। ये तीन बहसें हैं कि जो शेख मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह अदल कुल्ली के उनवान से जिक्र करते हैं। इंतहाई असासी बहस है ये, इंशाल्लाह बाद में आपकी खिदमत में इसकी तफसील अर्ज होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।